हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 139। अपनी अपनी सीट पर आकर बैठते ही उन सभी ने नोटिस किया कि सामने स्टेज पर एकदम अंधेरा था। तभी बीच में एकदम वाइट हाइलाइटिंग नजर आई और फिर उस लाइटिंग में मुस्कुराता हुआ खड़ा नजर आया एंकर कार्तिक रॉय। उसने बहुत ही ज्यादा एनर्जी और जोश के साथ माइक पर बोला, Hello and welcome you all, ladies and gentlemen. It's my pleasure to invite all of you and welcoming here at this lovely and amazing evening. उसके इतना बोलते ही पूरे हॉल एरिया में तालियों की एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। कार्तिक ने आगे बोलना शुरू किया, So, आज का ये इवेंट बहुत ही स्पेशल होने वाला है और जैसा कि आप सबको पता भी होगा, हमारे शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी SK डिजाइनिंग हाउस ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और मेहरा इंडस्ट्रीज ने इसे फंड किया है। वो दोनों ही हमारे स्पेशल गेस्ट एकदम सेंटर में बैठे हुए हैं। इतना बोलते हुए उसने अपने हाथ से उस तरफ इशारा किया जहां पर साहिल और शिविका दोनों बैठे हुए थे। उसके इस इशारे पर सभी की निगाहें उन दोनों की तरफ ही गईं और सभी मीडिया रिपोर्टर्स के कैमरे भी। इसके अलावा वहां पर अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग करने के लिए कई सारे लोगों ने अपने कैमरे शिविका और साहिल की तरफ घुमा लिए। कैमरों के साथ साथ उन सभी के फ्लैश की तेज चमकती रोशनी भी शिविका की आंखों पर पड़ी। इतनी सारी रोशनी एक साथ अपने ऊपर पड़ने की वजह से शिविका ने एकदम चेहरे के आगे अपना हाथ कर दिया। उसे इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी और वो जितना हो सके कैमरे से दूर ही रहती थी। उसे लाइमलाइट खुद पर रहना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उसके ठीक बगल में बैठे हुए साहिल ने मुस्कुराते हुए उस तरफ देखा। वो सभी लोग उन दोनों की साथ में तस्वीरें लेना चाहते थे। इस बात का शोर सुनते हुए शिविका ने भी हल्के से अपना हाथ चेहरे के सामने से हटा लिया और सारे कैमरों की तरफ देखते हुए बोली, हेलो। उसने बस इतना ही कहा और फिर तस्वीरों के लिए वहां पर बैठकर जबरदस्ती मुस्कुराती रही। कुछ देर तक उन दोनों की तस्वीरें क्लिक करने के बाद सभी का कैमरा दोबारा से स्टेज की तरफ हो गया। रुद्र भी शिविका के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। इस बात से किसी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता था कि रुद्र और शिविका दोनों अच्छे दोस्त हैं और उनकी फैमिली भी एक दूसरे को जानती है, तो वे अक्सर एक दूसरे के इवेंट और पार्टी में नजर आते थे और हर तरह से एक दूसरे को एक अच्छे दोस्त की तरह सपोर्ट भी करते थे। दोबारा से सभी की नज़रें अपनी तरफ शिफ्ट होते देख कार्तिक ने सबसे पहले उस इवेंट के मैनेजर को अपने साथ स्टेज पर बुलाया और उसे माइक देते हुए कहा, हमारे मैनेजर जतिन सर, आप सबको आज के इस शो के बारे में कुछ बताएंगे और इसके साथ ही हमारी ज्वेलरी डिजाइनिंग हेड अंकिता मैम, वे आपको ज्वेलरी की डिज़ाइन के बारे में बताएंगी। उसके बाद आप सभी यहाँ पर सारी ज्वेलरी डिज़ाइन को सामने से देख पाएंगे हमारी मॉडल्स पर कि आप लोगों पर वे कैसी लगेंगी। मुझे तो पता है SK डिजाइनिंग हाउस के सारे डिज़ाइन बहुत ही बेस्ट होते हैं, लेकिन आज आप लोग वो सब देखेंगे और पूरा शो एंजॉय करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। थैंक्स टू ऑल एंड यू ऑल गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जतिन सर एंड अंकिता मैम। इतना बोलते हुए उसने माइक जतिन की तरफ बढ़ाया और जतिन माइक लेकर सेंटर में खड़ा हो गया। उसके पीछे ही अंकिता भी वहां पर आई और वे दोनों ज्वेलरी डिजाइन्स के बारे में डिटेल में थोड़ी बहुत चीजें बताने लगे। दूसरी तरफ फ्रंट स्टेज पर इवेंट शुरू हो चुका था और बैक स्टेज पर कुछ बहुत बड़ा उन सबका इंतजार कर रहा था। तभी स्नेहा अपने साथ करण को लगभग खींचते हुए वहां पर लेकर आ रही थी। वहां पर आते ही करण ने जो कुछ भी सामने देखा उसके बाद वो एकदम हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, व्हाट द हेल, ये सब क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, और इधर भी ये ज्वेलरी बॉक्स ये ऐसे ही खुला हुआ क्यों है, सारी मॉडल्स ने अपनी ज्वेलरी पहन ली है क्या, लेकिन तुम सब इतना सदमे में क्यों लग रहे हो। इतना बोलते हुए उसने वहां पर खड़ी मॉडल्स की तरफ ध्यान से देखा। उस ज्वेलरी बॉक्स में अभी भी ज्वेलरी रखी हुई थी और बहुत सारी लड़कियां बहुत ही डरी सहमी हुई एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। डरने से ज्यादा वे सब कुछ घबराई हुई लग रही थीं, बिल्कुल उस तरह से जैसे स्नेहा घबराई हुई थी। तुरंत सबको ऐसे सामने देखकर भी करण समझ नहीं पाया कि उनके घबराने का क्या कारण है। करण ने बारी बारी उन सब की तरफ देखा, वो अभी भी अपने सवाल के जवाब के इंतजार में था, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं बोला तो करण ने थोड़ी तेज आवाज में फिर से पूछा, क्या प्रॉब्लम हुई है, तुम सब मुझे ठीक तरह से पूरी बात बताओगी या फिर नहीं। स्नेहा के हाथ से झटक कर अपना हाथ छुड़ाते हुए करण ने उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी सख्ती से पूछा। उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए जैसे तैसे बोलना शुरू किया, करण वो ज्वेलरी बॉक्स ये देखो, शायद मेरा मतलब है कि सारी ज्वेलरीज। काफी ज्यादा अटक अटक कर भी स्नेहा सिर्फ इतना ही बोल पाई। उसके इतना बोलने से करण को कुछ भी समझ नहीं आया तो वो झुंझलाहट में अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो ना। अच्छा रहने दो, तुम स्नेहा, मेघा तुम बताओ क्या हुआ है। इतना बोलते हुए वो आगे मेघा की तरफ बढ़ा। मेघा उन सब में सबसे ज्यादा मैच्योर लड़की थी क्योंकि वो ऐसे काम ही करती रहती थी और वो इस मॉडलिंग इवेंट की इंस्ट्रक्टर भी थी। वो सारी लड़कियों को मैनेज करती थी और बाकी सारी चीजें भी देखती थी। वो उन सब में सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी थी, इसीलिए ही करण उससे ये जवाब जानना चाहता था कि क्या हुआ ऐसा कि वे सारी मॉडल इतनी ज्यादा परेशान लग रही हैं। रैंप पर जाने के लिए उन सबकी पोजीशन भी डिसाइड हो चुकी थी, तो फिर ऐसे लास्ट मोमेंट पर उसे वहां पर क्यों बुलाया गया था और उसे ही क्यों? ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो वे बाकी सारे लोग मिलकर भी ठीक नहीं कर सकते थे? ये सारी बातें करण के दिमाग में चल रही थी और वो फिलहाल अपने जवाब के लिए मेघा की तरफ देख रहा था। तभी मेघा ने आगे आते हुए कहा, पता नहीं करण, एक मिनट, तुम वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ, तभी कुछ पता चलेगा। इतना बोलते हुए मेघा ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां दरवाजे के बाहर दोनों सिक्योरिटी गार्ड अपना मुंह लटका कर खड़े हुए थे। करण समझ गया कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन उसे कोई भी ठीक तरह से नहीं बता रहा था, तो वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया और उसने अब लगभग चिल्लाते हुए कहा, मेघा तुम भी, ये पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है ना अभी, पता है ना तुम्हें, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इसीलिए बताओ सीधी तरह से क्या हुआ है। करण अब तक वहां पर आए हुए काफी देर हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, तो ये बात बोलते बोलते ही उसकी आवाज भी थोड़ी तेज हो गई और वो काफी गुस्से में भी था। उसे इस तरह तेज आवाज में चिल्लाते सुनकर उसके आसपास खड़ी लड़कियां डरकर घबरा गईं और अपनी अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो गईं, क्योंकि वे जहां तक करण को जानती थीं वो बहुत ही नरम, सॉफ्ट दिल वाला, अच्छा और काइंड इंसान था, जो बहुत ही जेंटली सबसे प्यार से बात करता था। वो जल्दी इस तरह से गुस्सा नहीं करता था, यहां तक कि कितने महीनों से वो अपने ऑफिस कलीग के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसे जल्दी किसी ने भी गुस्से में नहीं देखा था। पर अभी करण का गुस्सा जायज भी था, क्योंकि वो इवेंट को सक्सेसफुल और हिट बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। इतने दिनों से और सुबह से तो वो बिना कुछ खाए पिए ही इन सब कामों में लगा हुआ था। ऐसे में उसे उम्मीद नहीं थी कि एकदम इवेंट के शुरू होने वाले ऐन मौके पर ऐसी कोई गड़बड़ सामने आ जाएगी, और वो भी गड़बड़ क्या है वो उसे कोई खुलकर बता भी नहीं रहा था। उसे बस ये समझ में आ रहा था कि कुछ तो बड़ा कांड हुआ है, बस इसीलिए वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया और उसने सब पर चिल्ला दिया।
करण को गुस्से में देखकर किसी की भी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो भी मामला था वो और भी ज्यादा पेचीदा था। इसलिए उन लोगों को लगा कि वो पहले ही इतने गुस्से में हैं, अब अगर हम उसे ये प्रॉब्लम बताएंगे तो वो और भी ज्यादा नाराज हो जाएगा, इसलिए किसी की भी पूरी बात बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए आखिर उन सबके बीच में से हर्षिता निकलकर सामने आई। उसने डार्क ग्रीन कलर का सिल्वर स्टोन वर्क वाला गाउन पहना हुआ था। उसकी हेयर स्टाइल भी बाकी सारी लड़कियों से डिफरेंट और यूनिक थी। उसके सिर पर पूरे बालों में मोतियों वाले हेयर एक्सेसरीज लगे हुए थे। उसके मेकअप पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था और हर्षिता पहले ही काफी खूबसूरत थी। वो अपने पूरे रेडी लुक में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने आगे आते हुए कहा, करण भाई प्लीज़ आप गुस्सा मत करिए, आप अगर इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, और आपके अलावा हमें नहीं पता था कि हम किससे इस बारे में बात करें। हर्षिता ने जैसे तैसे ये पूरी बात करण से कही, तो करण अपने आप को थोड़ा शांत करता हुआ बोला, हाँ मैं भले ही थोड़े गुस्से में आ गया था, लेकिन मैं तुम सबको खा नहीं जाऊँगा, कम से कम बताओ तो मुझे आखिर प्रॉब्लम क्या है। करण ने ये बात थोड़े आराम से पूछी तो फिर हर्षिता एक गहरी सांस लेती हुई उसे असल बात बताती हुई बोली, भाई करण भाई, वो ये ज्वेलरी बॉक्स, ये शायद नकली ज्वेलरी है, और जहां तक हमें पता था ऑफिस से सारी रियल डिज़ाइन आने वाली थी, सबसे एक्सपेंसिव वाली, लेकिन ये वो रियल डिज़ाइन नहीं है, ये सब उनकी कॉपी है, और ये बात बस हमें अभी पता चली जब आयुषी के हाथ से ये ब्रेसलेट गिर गया और तुरंत ही उसका सेंटर स्टोन निकल गया, तब मेघा मैम ने नोटिस किया कि वो तो नकली है। उसके बाद फिर हमने एक एक करके सारी ज्वेलरी चेक की तो हमें पता चला कि ये पूरा ज्वेलरी बॉक्स चेंज हो गया है, और इसमें जितनी भी ज्वेलरी है वो सभी हमारी ज्वेलरी की कॉपी है। तो आप बताइए अब हम क्या करें, हमें तो बस कुछ ही मिनट में स्टेज पर जाना है, एंकर ने शो स्टार्ट भी कर दिया है, इस बारे में हम और किसी से कुछ बता भी नहीं सकते भाई। हर्षिता ने उसे ये बात बताई तो करण को जैसे पहले तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि जो कुछ भी वो अभी सुन रहा है वो सब कुछ सच है। करण ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ डाला और फिर इधर उधर अपना सिर हिलाकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहा, नहीं तुम ये क्या बोल रही हो हर्षिता, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? ज़रूर तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी, ये ज्वेलरी नकली कैसे हो सकती है, दिखाओ मुझे। इतना बोलते हुए करण ने उस बॉक्स में रखी हुई एक ज्वेलरी को उठाकर देखा और फिर उसे अलग अलग पलटकर चेक करने लगा।